आहन ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। उसने चाहत को यूनिवर्सिटी भेज दिया था, साथ ही उसने उसके पीछे अपने गार्ड को निगरानी के लिए रखा था। चाहत की तरफ से आहन बेफिक्र था, इसलिए वो आराम से काम कर रहा था कि तभी उसके पास आयुष का कॉल आया। आयुष ने उसे अपनी भेजी हुई लोकेशन पर आने के लिए कहा। आयुष ने कॉल पर इतना ही कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई है और उसने कुछ नहीं बताया। इस वजह से आहन से बहुत गुस्सा था। आहन परेशानी में फास्ट ड्राइव करते हुए आयुष की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा। वो एक पार्क था जो उस हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पर था जिसमें शिवानी को रखा गया था। वहां पहुंचते ही आहन जल्दी से अंदर गया तो उसने देखा कि शिवानी व्हीलचेयर पर थी और उसके पास में आयुष हैरान परेशान खड़ा था। आहन जल्दी से उनके पास जाकर बोला, तुम मॉम को लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? वो थोड़ा ठीक हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें कहीं भी ले जाओ। आहन गुस्से में आयुष को डांटने लगा तो वो मुंह बनाकर बोला, यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉम ने मुझे बोला कि उन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेनी है और मैं उन्हें पार्क में ले आया, और अब ये यहाँ से वापस हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। आप जानते हैं ना, मॉम आप ही की तरह जिद्दी हैं। जैसे ही आयुष ने सब बताया, आहन ने शिवानी की तरफ देखा तो शिवानी ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मुझे उस हॉस्पिटल में नहीं जाना है, वहां रहकर मैं और बीमार पड़ जाऊंगी, मुझे मेरे घर जाना है। और विजय मुझे अब तक मिलने के लिए क्यों नहीं आए? शिवानी बार बार विजय के बारे में पूछ रही थी। अब आहन को समझ आ गया था कि आयुष ने उसे वहां क्यों बुलाया होगा। आहन ने आयुष की तरफ देखा तो उसने धीरे से कहा, अब आप ही इन्हें जवाब दो। शिवानी की उस हालत में आहन विजय के कारनामों के बारे में उसे नहीं बता सकता था। आहन शिवानी के पास घुटनों के बल बैठा और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मॉम, मिस्टर ओबेरॉय बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और ऐसे में मैंने उन्हें बताया तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। अब आप ठीक हैं तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो जिस जगह पर गए हैं वहाँ पर आसानी से कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाता। क्या तुमने अब तक उन्हें कुछ नहीं बताया? शिवानी ने आंखें बड़ी करके कहा। आहन, मेरे एक्सीडेंट को इतना टाइम हो गया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैं फिर मिस्टर ओबेरॉय को सब बता देता हूँ। वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आएंगे और उनके बिजनेस में जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार आपको लेनी होगी। वैसे भी वो मुझ पर ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी वजह से उनकी कंपनी के शेयर्स काफी नीचे आ गए हैं। उनके गुस्से का सामना आप ही कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया तो फिर मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूंगा। आहन ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपना मोबाइल निकाला। ऐसे ही आहन और विजय के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, उसका एक कारण बिजनेस भी था। शिवानी ने आहन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पर मुझे उस हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे मेरे घर छोड़ दो। शिवानी को हाँ कहने से पहले आहन ने आयुष की तरफ देखा। आयुष खुद आहन के घर पर सेटल था, ऐसे में वो शिवानी को अकेले ओबेरॉय मैंशन नहीं छोड़ सकता था। आहन की उलझन को समझते हुए आयुष बोला, डोंट वरी भाई, मैं मॉम के साथ घर पर रह लूंगा और आप मेरी फिक्र भी मत कीजिए, मैं सनी को वहां बुला लूंगा। आयुष वापस शिवानी के साथ रहने के लिए ओबेरॉय मैंशन जा रहा था। आहन की आधी टेंशन उसी के साथ खत्म हो चुकी थी। आयुष के आने की वजह से वो चाहत के सामने खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। ऊपर से आयुष भी बार बार चाहत को भाभी कर कहकर उसे परेशान करता था। आहन ने शिवानी को घर जाने की हामी भर दी थी। उसने शिवानी की तरफ देखकर कहा, मैं आपके घर पर रखने के लिए मान गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगी। मैं रोज शाम आपको मिलने के लिए आऊंगा, डिस्चार्ज के लिए तो आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया। आयुष और आहन शिवानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे ताकि उसके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर सके। वैसे शिवानी की तबीयत काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी थी, बस वीकनेस थी और पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आहन के फार्म हाउस में दामिनी और अक्षरा कैद थीं। दामिनी को वहां आए हुए एक महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। जब भी उसे मौका मिलता वो अक्षरा से मिलने जाती और उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती। आज भी शाम के वक्त जब उसके आसपास गार्ड्स नहीं थे तब दामिनी धीमे कदमों से चलते हुए अक्षरा के पास पहुंची। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने अक्षरा को सब याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं होगा पर तुम मुंबई के टॉप 5 बिजनेसमैन में आने वाले मिस्टर देव गोयंका की बेटी हो। तुम्हारी शादी आहन ओबेरॉय से होने वाली थी, तभी तुम शादी के जोड़े में हो। देखो ये महंगी ज्वेलरी और इतना हैवी शादी का जोड़ा कोई मिडिल क्लास लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर मैं अमीर हूं तो यहां क्या कर रही हूं? क्या मेरा पति मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा? अक्षरा ने अनजान बनते हुए पूछा, जबकि उसे सब कुछ याद था। दामिनी उसे बार बार आहन और उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ याद दिला चुकी थी, फिर भी उसके कुछ भी याद न रहने पर वो चिढ़ते हुए बोली, पागल लड़की, पिछले 30 दिनों से तुम्हें एक ही कहानी बार बार सुना रही हूँ। कितनी बार बताऊं, तुम्हारी शादी आहन ओबेरॉय से होने वाली थी जिसने शादी से तुम्हें किडनैप कर लिया और बाहर ये खबर फैला दी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। आहन ओबेरॉय की वजह से तुम्हारे घर वालों ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और यहां तक कि उन्होंने तुम्हें ढूंढने तक की कोशिश नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है इसका दोषी एक ही शख्स है और वो है आहन ओबेरॉय। तुम्हें उससे बदला लेना है। तो क्या आहन ओबेरॉय मुझे यहाँ बचाने के लिए आएगा? अक्षरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। दामिनी को इस वक्त अक्षरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, काम डाउन दामिनी, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये लड़की यहाँ इतने दिनों से कैद है तो पागल हो चुकी है और मैं इसके सामने ज्यादा दिनों तक रही तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। मुझे इसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा और यही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी। वो मुझे देखने के लिए रोज आते हैं लेकिन इस पागल के लिए तो खाना तक दरवाजा थोड़ा सा खोल कर रख देते हैं, चेक तक नहीं करते कि ये यहाँ आसपास है भी या नहीं। दामिनी ने इतने दिनों में काफी कुछ नोटिस कर लिया था। अक्षरा की मानसिक हालत उन लोगों के सामने ठीक नहीं थी तो वो उसके सामने भी नहीं जाते थे। एक दो बार अक्षरा ने अपने पागलपन में उन पर हमला बोल दिया था, इसलिए गार्ड्स खाना भी दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर की तरफ खिसका देते थे और फिर अक्षरा उसे खाने के लिए आ जाती थी। उन्हें इस बात की पूरी गारंटी थी कि इस जगह से अक्षरा नहीं भाग सकती। दामिनी चालाक थी इसलिए दामिनी को चेक करने के लिए खुद दानिश आता था। कुछ देर तक दामिनी ने कुछ नहीं कहा और अपने गुस्से को शांत किया। तभी अक्षरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर आहान ओबरॉय ने मुझे यहाँ बंद किया है तो मेरे सामने आने पर मैं उसे छुरा मार दूंगी। अक्षरा की बात सुनकर दामिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाकर खुशी से कहा, हाँ तुम उसकी जान ले लेना, तुम बस किसी तरह यहाँ से निकलकर देव को इनका के घर पहुँच जाना, वो तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे। जाने से पहले मैं तुम्हारा हुलिया ठीक कर दूंगी। अक्षरा ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर वो खुश होकर बोली, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा इतना ध्यान रखती हो जबकि यहाँ तो कोई मुझे पूछता तक नहीं। तुम मेरी बेस्ट बड़ी हो, चलो अब जल्दी से जाओ वरना कोई आ गया तो तुम्हें भी यहाँ पर बंद कर देगा। अक्षरा ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई 10 साल की बच्ची हो।
अक्षरा के बताने पर दामिनी को ख्याल आया कि वाकई उसे अक्षरा के पास आए हुए टाइम हो गया है। वो जल्दी से उठकर बाहर चली गई। उसके जाते ही अक्षरा ने अपने पैर सामने वाली कुर्सी पर रखे और उबासी लेने लगी। आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है, तुम मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो दामिनी दास। अपने घर और आहान तक कैसे पहुँचना है वो मैं खुद जानती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की ना आहान ओबेरॉय, तो तुम्हें बाकी जिंदगी मेरे साथ ही बितानी होगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, आखिर तुम्हारे काले राज जो मुझे पता चल गए हैं, अक्षरा ने ईविल स्माइल करते हुए कहा। फिर वो धुन गुनगुनाने लगी। शिवानी को डिस्चार्ज दिलवाने के बाद आहान उसे आयुष के साथ ओबेरॉय मैंशन छोड़कर आ गया। वहां उसने शिवानी के लिए 2 नर्स हायर की थी जो ड्यूटी स्विच करके पूरा दिन उसका ख्याल रखेंगी। आयुष भी अपने सामान के साथ वहां पर आ चुका था। आहान ने आयुष को शिवानी और खुद का ख्याल रखने के लिए कहा। उनके साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद आहान घर पर आने के लिए निकला ही था कि तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन बेल बजी। आहान ने उसे चेक किया तो देखा कि वो नोटिफिकेशन उसने खुद ही लगाया था ताकि वो चाहत को टाइम से पिक कर सके। आहान ने गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ते हुए कहा, इतना टाइम हो गया और पता ही नहीं चला, डॉल मेरा वहां इंतजार कर रही होगी। आहान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आधे घंटे का रास्ता 20 मिनट में पार कर लिया था। वहां पहुंचते ही आहान ने देखा चाहत और श्रद्धा यूनिवर्सिटी के दरवाजे के आगे खड़ी हुई थीं। आहान उनके पास जाने के बजाय वहीं पर खड़ा उनकी तरफ देखने लगा। चाहत बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। श्रद्धा ने इरिटेट होकर कहा, यार मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूंगी तो वो तुझे खाने ही जाएगा, पिछले 40 मिनट से हम उसके आने का वेट कर रहे हैं। तू कॉल करके बता देती ना कि हमारी आज एक क्लास मिस हो गई, अभी भी उसे बुलाने के लिए कॉल करने के बजाय यहाँ पर खड़ी उसका वेट कर रही है। अजीब पागल लड़की है तू, पूरा बदल गई है, श्रद्धा उसे डांट रही थी क्योंकि चाहत ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया था। चाहत ने घूर कर श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, वो बिजी रहते हैं और टाइम से आ जाएंगे, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, उन्होंने कोई पिकअप ड्रॉप सर्विस नहीं खोल रखी जो मुझे टाइम से लेने के लिए आए। तुझे वेट करना है तो कर वरना चली जा। हाँ तो यही मैं कह रही थी कि उसका इतना बड़ा बिजनेस है तो काम में भूल गया होगा, चल ना अब चलते हैं, यहाँ खड़े खड़े मेरे तो पैरों में दर्द होने लग गया। श्रद्धा ने इस बार काफी नरमी से कहा ताकि चाहत मान जाए। श्रद्धा के इतने समझाने के बाद भी चाहत ने ना में सिर हिलाकर कहा, तुझे जाना है तो जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाहत की मना करने पर श्रद्धा गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। अब उससे और वेट नहीं हो रहा था तो वो अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुझे मरना है तो मर, मुझसे अब और वेट नहीं होता, कर अपने हीलो का वे, देखना रात तक भी नहीं आएगा वो, फिर क्या करोगी। आहान उनकी बातें तो नहीं सुन पा रहा था लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि उन्हें वेट करते हुए काफी टाइम हो गया था। श्रद्धा अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी तो वो अकेले चली गई। अचानक आहान के दिमाग में कुछ सूझा तो उसने अपनी गाड़ी वहीं साइड पर लगा ली। तो तुम सच में मेरा इंतजार कर रही थी डॉल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा इंतजार कब तक कर सकती हो, या तुम भी अपनी फ्रेंड की तरह बोर होकर मुझे छोड़कर चली जाओगी, आहान ने खुद से कहा। चाहत का टेस्ट लेने के लिए वो वहीं पर खड़ा हो गया और ये देखने लगा कि आखिर कब तक चाहत उसका इंतजार करती है।